मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 17 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं विकास सिंह, आप पंधारी जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं, दीपक कुमार मंडल दरभंगा बिहार से हैं और साजिया मंसूरी लौंगी कला जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो विकास, दीपक और साजिया, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के साथ ही मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूं सुनील कुमार यादव को जो जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने ईमेल के जरिए सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के पीएससी के कर अधिकारी इन ब्रैकेट पंचायती राज के पद पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसका श्रेय उन्होंने एकेडमी को दिया है। तो सुनील, इसके लिए मैं सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपने जीवन में और इसी तरह से सफलताओं के पायदान लगातार चढ़ते चले जाएं। दोस्तों, मैं थोड़ी सी एक अपील, या अपील नहीं कहना चाहिए, एक बात करना चाहूंगा अपने आठवें बैच के स्टूडेंट से। आठवें बैच को कंप्लीट हुए 3 सप्ताह हो गए हैं, हालांकि 3 सप्ताह से अधिक हो गए हैं। मैं 3 सप्ताह इस रूप में कह रहा हूं कि संडे को क्लास खत्म हुई थी, आप लोगों को घर पहुंचते पहुंचते मंडे ट्यूसडे हो गया, लग गया होगा। और इस तरीके से अगर मैं ये मान करके चलूं कि, हालांकि मैं ये मानता हूं कि आप डेली ऑडियो लेक्चर बिल्कुल भी सुनना बंद नहीं किया होगा, आपने मंडे को भी किसी तरह से मैनेज किया होगा, भले ही रास्ते में ही क्यों ना किया हो, लेकिन ट्यूसडे से आप लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से फिर से डेली ऑडियो लेक्चर सुनने लगे होंगे। तो अगर मैं उस तरह से देखूं तो मित्रों, 3 सप्ताह का वक्त पूरा हो चुका है क्लासेस को खत्म हुए। आप लोगों को ध्यान होगा कि क्लास शुरू होने पहले ही लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक वायदा किया था और वो ये कि जब क्लासेस यहां से खत्म हो जाएंगी, जब आप यहां से जाएंगे तो आप वही नहीं रह जाएंगे जो आप वह हैं जबकि आप यहां आए हुए हैं, यानी कि आप परिवर्तन महसूस करेंगे। सिंपल सी बात। मित्रों, आप में से बहुत से फ्रेंड्स ने ईमेल के जरिए सूचित किया है कि वे परिवर्तन महसूस करने लगे हैं। ठीक है, उनमें वो उस परिवर्तन की झलक बहुत जल्दी दिखाई देने लगी, वो आने लगे, उन्होंने उस तरीके से बड़े संवेदनशीलता के साथ चीजों को लिया, ग्रहण किया। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब भी जिन्होंने अभी तक अपनी अभिव्यक्ति नहीं की है, प्लीज थोड़ा सा बताएं कि क्या आप परिवर्तन महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि अगर कर रहे हैं तो केवल ये मत लिखिए कि आई एम फीलिंग चेंज, नो, आप बताइए कि क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, परिवर्तन किस तरीके का है। यहां तक कि अगर नहीं कर रहे हैं या कुछ नकारात्मकता भी है वो भी आप लिखिए, और लेकिन विथ रीजन कि अगर नकारात्मकता है, कुछ मतलब एक निगेटिव इंपैक्ट है, तो उस निगेटिव इंपैक्ट के बारे में भी बताइए, वो हम लोगों के बहुत काम आएगी। और इसके साथ ही साथ मित्रों, मैं आप सबके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूंगा। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी बात अपने ढंग से लिखेंगे, लेकिन पेरेंट्स से मैं चाहूंगा कि अगर वे अपने बच्चों में कुछ इस तरह का परिवर्तन महसूस करें, सकारात्मक नकारात्मक, और यहां तक कि अगर वो परिवर्तन भी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप सब भी कोशिश कीजिए कि हमें जानकारी दे सके। आप मेल के जरिए जानकारी दे सकते हैं, अपने बच्चों से ही कहें कि भाई वो छोटा सा मेल लिख दें, या हो सकता है आप खुद में सक्षम हो मेल लिखने के लिए, लेकिन हमें बताइए। ये हम इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं मित्रों कि ठीक है, आपके बच्चे आए आठवें बैच के रूप में, उन्होंने 15 दिन की क्लास अटेंड की और अब वो आपके पास लौट चुके हैं। अब आप महसूस कर रहे हैं उनके व्यवहार में, उनके पढ़ाई के तौर तरीके में, आचरण में, दिनचर्या में क्या परिवर्तन आए हैं क्या नहीं है, आप बहुत अच्छे से वाच कर लेंगे। हो सकता है कि स्टूडेंट खुद उसको महसूस न कर पा रहा हो, लेकिन दूसरे महसूस कर लेते हैं, और अभिभावक तो वैसे ही थोड़े से मेच्योर होते हैं तो उनमें वो क्षमता ज्यादा भी होती है कि उस परिवर्तनों को पकड़ सके। लेकिन हमारी चिंता केवल आठवें बैच तक नहीं है, नौवें दसवें आगे के बैच के लिए भी है। तो स्वाभाविक है कि जब आपके फीडबैक मिलेंगे तो हम अपने आप को और आने वाले बैचेस के लिए बेहतर बना सकेंगे। और मुझे लगता है सभी पेरेंट्स के लिए है कि जो दूसरे बैच के स्टूडेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही बच्चे होंगे, हमारे ही लोग होंगे, क्योंकि अंततः समाज हमारा है और देश हमारा है। तो प्लीज आप सब कम से कम इस दायित्व को निभाने की कोशिश करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करूंगा। मित्रों, आज के मुख्य विषय में अब आइए आते हैं। मैं कल इतिहास की तैयारी के बारे में आपसे बातें कर रहा था लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज उसी के भाग दो के रूप में मैं इतिहास की तैयारी के बारे में कुछ और बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले थोड़े से न्यूज एनालिसिस में कुछ देख लेते हैं, हालांकि न्यूज में खास कुछ है नहीं, राइट, लेकिन फिर भी एक दो चीजें देख लेते हैं। आपने सुना कि भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, ये पहला शिखर सम्मेलन है, पहला शिखर सम्मेलन, जबकि भारत का नार्डिक देशों के साथ सम्मेलन हो रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से देश नार्डिक राष्ट्र कहलाते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उसे रिपीट करूं, इसलिए कि अगर कल मैंने ये बात आपको बताई है तो आपके दिमाग में दर्ज हो जानी चाहिए, और अगर आपने दर्ज नहीं की है तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप डेली ऑडियो लेक्चर सुन तो रहे हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप बकायदे एटलस खोलते और फिर नार्डिक देशों को देखते और इसके बाद उनके जो नाम हैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिक दर्ज हो जाते, और फिर यदि आपने डीडी न्यूज कल की सुनी हो तब तो वो देश आपके दिमाग में चस्पा हो चुके होंगे और इन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। कल के डीडी न्यूज में नार्डिक देशों के साथ जो भारत के रिलेशन है उसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, बहुत ही अच्छा, जिसमें कि उसमें दो तो जो थे हमारे भूतपूर्व राजदूत ही थे जो वहां रहे हुए थे और कितनी गजब गजब की बातें वो बता रहे थे। हो सकता है कि आपने अगर मिस कर दिया हो तो मैं चाहूंगा कि उसे सुने, और मैं वैसे भी मित्रों आपसे कहता रहता हूं कि प्लीज डीडी न्यूज सुनने के लिए आप वक्त निकालें। तो उसमें आपने सुना पढ़ा भी, नीचे उनके लिखे हुए अक्षर भी उभर रहे थे कि जो खासकर जो नार्डिक कंट्रीज है जिसके जिन्हें हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं वो इनोवेशन के मामले में बहुत आगे हैं, नवाचार के मामले में, टेक्नोलॉजी उनकी बहुत हाई लेवल की है और भारत को ये सारी चीजें चाहिए। भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, मेक इन इंडिया में उनका सपोर्ट चाहिए, स्मार्ट सिटी में उनका सपोर्ट चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान में उनका सपोर्ट चाहिए, और ये सारे क्षेत्र भारत ने अभी जो शुरू किए हैं इसमें नार्डिक कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अभी मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या आउटकम होता है इसके बाद यदि जरूरी हुआ तो हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, अदरवाइज मित्रों कोई आर्टिकल्स आएंगे, आपके एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, उससे भी काम चल जाएगा, वो जैसी भी स्थिति होगी वैसा हम लोग देखेंगे। न्यूज में दोस्तों इतना ही है, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी एक क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत अच्छी क्लिपिंग से बिजनेस स्टैंडर्ड की है और इसमें ग्रामीण युवाओं में फिर से जगाना होगा कृषि के प्रति लगाव। मित्रों इसे मिस मत करिएगा, ये बहुत अच्छा है और इसके शुरुआत में आप देखिएगा कि तीन पैरे में उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न खड़े किए हैं। सुरिंदर सूद जी का लिखा हुआ है ये आर्टिकल, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं, मतलब दिमाग को झकझोर देने वाले प्रश्न। वो कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में सिंचाई पर इतना अधिक धन खर्च किया गया, सबसे अधिक धन खर्च किया गया जो कृषि के क्षेत्र में निवेश हुआ है, इसके बाद भी शुद्ध सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ा, संस्थागत ऋण की जो मात्रा है वो तीन गुनी कर दी लेकिन ऋण लेने वाले किसानों की संख्या नहीं बढ़ी, अनाज दूध बागवानी मछली इन सब के क्षेत्रों में उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा लेकिन पता लगा कि वैश्विक भूख सूचकांक में हम और नीचे आते चले जा रहे हैं, 119 देशों में अब हम 100 पर पहुंच गए, कुछ समय पहले हम 97 पर थे। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2/3 आबादी को सोचिए कि सब्सिडी पर अनाज देना शुरू कर दिया, फिर भी कुपोषण की सबसे गंभीर समस्या अगर कहीं है तो उसमें से भारत है और दुनिया के 1/4 कुपोषित लोग भारत में है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रश्न उठाए हैं, दिमाग को झकझोर देने वाले प्रश्न है ये, और यहीं से तो एनालिटिकल पावर डेवलप होती है। और इसके बाद इसी में आपको एक उल्लेख मिलेगा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एकेडमी के बारे में कि इन्होंने अभी एक पेपर नीति पत्र प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है कृषि क्षेत्र में नीतियों एवं विकास प्राथमिकताओं के बीच असंतुलन। मित्रों ये अगर आपको कहीं मिल जाता है, आप लोग अपने लेवल पर कोशिश कीजिए तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। तो मैं समझता हूं कि कृषि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, उसे आप बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों न्यूज़पेपर्स की मैं और आप सबको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वो है इतिहास की तैयारी भाग दो। भाग दो यानी कि मैं कल भाग एक की चर्चा कर चुका हूं, आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। एक बात मैं आप सबसे खास कर करना चाहूंगा, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि कैसे करते हैं तो उनका उत्तर होता है पढ़ाई। वो पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि पढ़ाई करना और तैयारी करना क्या दोनों में फर्क नहीं है या कि दोनों एक ही हैं? मुझे लगता है कि दोनों में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। और सच पूछिए कि जो स्टूडेंट इस फर्क को जान लेता है वही सही मायने में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, ज्यादा लोग पढ़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई और तैयारी के अंतर को नहीं समझ पाते। और सच पूछे तो यही वो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं लेकिन परीक्षा की तैयारी नहीं हो पा रही है। शायद आप सब इस बात को महसूस कर रहे होंगे जो उस पैटर्न पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों जो हिस्ट्री की भी जो आपको तैयारी करनी होती है, देखिए मैंने इसीलिए कहा इतिहास की तैयारी, मैंने इतिहास की पढ़ाई की बात नहीं की। पढ़ाई तो हम सब करते ही आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर इतना कंपटीशन फेस करना है, इतना कठिन कंपटीशन फेस करना है तो तैयारी से बात नहीं बनेगी आपको, उस पढ़ाई से बात नहीं बनेगी उसकी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपसे कुछ बातें की थी मित्रों, आज थोड़ी सी बात करूंगा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर आप उठा करके देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का आप सिलेबस उठा करके देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बहुत थोड़ा सा है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के 20-25 टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के बनते हैं, 20-25 तो बन जाते हैं। हालांकि सिलेबस में देखने पर आपको उन 20-25 टॉपिक को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बारे में अगर संभव हुआ तो मैं कभी आपसे बात करूंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक उसके अंतर्गत आते हैं। एक अच्छी बात है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपके फेवर में, और वो ये कि प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मेंस में पूछे जाते हैं। जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर उसी में वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल है, हिस्ट्री के साथ ही। और एक अच्छी बात यह भी है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी तक, पिछले अगर हम 5 साल के पेपर उठा करके देखें तो एक प्रश्न तो आता ही आता है जो या तो 12.5 नंबर का होता है या 10 नंबर का होता है, और अधिकतम 2 प्रश्न ही होते हैं। 2 प्रश्न से ज्यादा इनफैक्ट पिछले 5 सालों में नहीं पूछे गए हैं, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, 25 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 1 या 2। तो इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री का रोल भी थोड़ा कम है अपेक्षाकृत। लेकिन मैंने बताया आपको कि सिलेबस भी कम है, केवल 20-25 टॉपिक है। अगर इन 20-25 टॉपिक को आप जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बहुत गहराई से नहीं, सामान्य जानकारी के तहत भी अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। और इसीलिए मुझे कभी कभी यह भी लगता है मित्रों की, खासकर आज की दुनिया को समझने के लिए भी जरूरी है कि आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें, और उसमें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है तो इससे आपकी तैयारी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी होती रहेगी। इंटरनेशनल रिलेशन से तो क्वेश्चंस आते ही हैं जो आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में है, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन को भी अच्छे तरीके से तब तक मुझे लगता है नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री को, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को ना समझें। तो मित्रों ये थोड़ी सी बातें मुझे इतिहास की तैयारी के बारे में करनी थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 1-2 प्रश्न है, मैं थोड़े से उनके जवाब देना चाहूंगा। ईमेल के जरिए पूछे गए हैं प्रश्न है कि एग्जाम में कहां तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो प्री एग्जाम है, देखिए जैसे आपका अभी जून में एग्जाम है तो मार्च तक के प्रश्न आएंगे, यानी कि मार्च 2018 तक। अप्रैल मई की संभावना नहीं के बराबर होती है। और यहां अगर हम मार्च को ले लें तो आप पिछले साल मार्च या पिछले साल जनवरी तक को ले सकते हैं, तो लगभग लगभग एग्जाम शुरू होने से डेढ़ साल पीछे आप चले जाइए, मतलब मार्च से लेकर के सवा साल चले जाइए, मार्च से लेकर के मार्च 2018 से लेकर के जनवरी 2017 तक सामान्यतः ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 2018 के करीब आते चले जाएंगे प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि जितना लंबा वक्त पीछे आप जाएंगे वहां से प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन जब आप नजदीक पहुंचते चले जाएंगे एग्जामिनेशन डेट के तो वहां प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो ये आपके बहुत फेवर में चीज होती है। दूसरा ये प्रश्न है मित्रों कि कुरुक्षेत्र और योजना के बारे में, डेफिनेटली कुरुक्षेत्र और योजना में जो आर्टिकल्स आते हैं वो बड़े परमानेंट नेचर के होते हैं, ठीक है वो पीरियोडिकल्स होते हैं, उनमें जो डेटा होते हैं वो उसी समय के होते हैं, नीतियां जो होती हैं वो उसी समय की होती हैं, लेकिन उनमें जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं जो लगभग लगभग लंबे समय से चली आ रही हैं, तो आपके लिए वो आधारभूत तैयारी का बहुत अच्छा मंच होता है। तो आपको योजना और कुरुक्षेत्र के से तो लगातार जुड़े रहना चाहिए और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उन्हें कलेक्ट भी करते चलना चाहिए, जिसे आप सब कहते हैं नोट्स बनाना, वो भी लगातार अभ्यास में आपके होना चाहिए। तो मित्रों ये कुछ प्रश्नों के जवाब थे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अभय कुमार सिंह दरभंगा बिहार से, अमरिंद्र यादव सेजल राय खगड़िया बिहार से, और सेजुल कुमार राजकोट गुजरात से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।